6 देवताओं की उपासना हमारा भाग्य नहीं बदल सकती, जबकि अरिहंतों की उपासना भाग्य को भी चेंज कर सकती है। जैन शास्त्रों में संक्रमण शब्द आता है, उसका मतलब ही है रूपांतरण। अरिहंतों की भक्ति आपके पाप कर्म को निर्जरित तथा फिर पुण्य में संक्रमित बदल कर देती है। इसलिए कहा है सब व पावपना सुनो, सभी पापों का नाश। पापों के नाश का मतलब ही है दुर्भाग्य का नाश, सद्भाग्य का उदय। श्रमण, भगवान महावीर की कृपा दृष्टि से ही गोशालक बाल तपस्वी वेश्यान के तेजस समुद्घात से निकल रही आग से बच पाया था। क्रांतिद्रष्टा ज्योतिर्धर जवाहराचार्य जी के मुख से भी यह निकला करता था, अरिहंत देव नेड़े, जिन्हें तीन भुवन में कुन छेड़े, अर्थात जिसके रोम रोम में अरिहंतों की भक्ति है, उसे तीन भुवन में भी कोई परेशान नहीं कर सकता। महान क्रियोधारक आचार्य प्रवर श्री हुक्मीचंद जी महाराज साहब तो प्रतिदिन 2000 नमोत्थुन देकर अरिहंतों की भक्ति किया करते थे। उनके तप संयम के साथ जप का अद्भुत प्रभाव था कि रामपुरा में जाते ही वहां के हैजे का प्रकोप शांत हो गया, कोड़ी का कोर दूर हो गया। राजी बाई जो लोहे की सांकलों से बंधी थी, उनकी दृष्टि पड़ते उसकी सांकलें टूट गईं। नाथद्वारा में प्रवचन देते समय सोने के सिक्कों की वर्षा हुई। उनके जीवन में ऐसे कई चमत्कार सहज में जुड़े हुए हैं। पंजाब के महान आचार्य श्री अमर सिंह जी मा सा भी 700 नमोत्थुन प्रतिदिन दिया करते थे। प्राचीन परंपरा में साधु संत एवं आचार्य भगवंत नमोत्थुन की साधना किया करते थे, उसके कई प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। शक्रस्तव के पाठ से तरंगों की रेखाएं मस्तिष्क में अंकित होती रहती हैं और बार बार के जाप से वे तरंगे घनीभूत हो जाती है। घनीभूत होकर वे तरंगे ध्याता पर परमात्मा का प्रभाव छोड़ती चली जाती हैं। अरिहंतों की स्तुति करते करते उत्कृष्ट भाव जग गए तो तीर्थंकर गोत्र तक का बंधन हो सकता है। तीर्थकर गोत्र बंधन के 20 बोलों में 1-2 बोल की भी आराधना उत्कृष्ट भावों से कर ली गई तो भी तीर्थकर गोत्र का बंधन हो सकता है। जैसे कृष्ण वासुदेव ने कभी सामायिक नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रत्याख्यान नहीं किया, मात्र धर्म दलाली दीक्षा की दलाली उत्कृष्ट भावों से की तो भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया, क्योंकि दीक्षा की दलाली उन्होंने इतनी जबरदस्त की कि अपनी पटरानी रानियां पुत्र पुत्रिया पौत्र आदि सभी को सहर्ष दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। पुत्री केतुमती की भावना नहीं थी दीक्षा की तो भी उसे यनकेन प्रकारेण समझाकर आगे बढ़ाया कि मैं तो संयम ले नहीं सकता, परंतु तुम तो आगे बढ़ो। ऐसी निस्वार्थ भावना से दलाली करने से ही वे आगामी 24 में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनेंगे। इसी तरह प्रभु की स्तुति करने से हमारा मन निर्मल बनता है, तन पावन बनता है, वचन निर्मल बनता है, क्योंकि हम गुणियों के गुणगान करते हैं तो वे गुण भी हमारे भीतर समाहित हो जाते हैं। शादी के तुरंत बाद ही एक व्यक्ति को किसी कारणवश 14 वर्ष की जेल हो गई। उसकी पत्नी घर में रहती, वह रोज सुबह आईने में अपना चेहरा देखती और संकल्प करती कि मेरा चेहरा कल भी ऐसा ही दिखना चाहिए। वह 14 साल तक रोज ऐसा संकल्प करती रही। परिणाम स्वरूप 14 साल पूर्ण होते ही पति को जेल से छुड़ा कर लेने के लिए गई तो उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा 14 साल पूर्व था, जबकि उसके पति की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके पति ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया, मेरा संकल्प, मैं रोज सुबह ऐसा संकल्प करती थी कि मेरा चेहरा ऐसा ही नजर आना चाहिए। समझने की बात यह है कि जब व्यक्ति की सोच का इतना गहरा प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है तो हम प्रभु की स्तुति हर रोज श्रद्धा के साथ करें तो हमारे अंदर में भी प्रभुता जग सकती है। वैसे भी अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म की यह विशेषता है। जैन धर्मानुसार व्यक्ति उत्कृष्ट अध्यवसायों से यदि परमात्मा की स्तुति करता है तो भक्त भक्त न रहकर भगवान बन सकता है। इतनी ऊंची बात अन्य किसी भी धर्म में नहीं मिलेगी। बाकी सब धर्मों में भक्त भक्त ही रहता है। अधिक भक्ति करे तो उसका सहयोग किया जा सकता है। यह मौलिक अंतर आपको जैन दर्शन में मिलेगा। कोई व्यक्ति क्रोध करना नहीं चाहता, झूठ बोलना नहीं चाहता, फिर भी न चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि अनादिकाल से हम क्रोध करते आ रहे हैं। परंतु मैं सोचता हूं कि यदि हमें क्रोध को कम करना है, हमारा स्वभाव बदलना है, तो हमें हर रोज गजसुकमाल मुनि गुणसेन अग्निशर्मा मैतार्य मुनि आदि का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। पूरी संभावना है कि हमारे अंदर में परिवर्तन आएगा। परमात्मा की स्तुति करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कभी कथा पढ़कर तो कभी गीत गाकर तो कभी किसी अन्य तरीके से, भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, परंतु उन सभी में भावों का तालमेल कितना होता है कह नहीं सकते। परंतु परमात्म स्तुति का यदि कोई सर्वोत्कृष्ट माध्यम है तो वह है नमोत्थुन का पाठ। इसकी रचना 14 पूर्वों के ज्ञानी गंधर्वों के द्वारा की गई है, जिसमें एक एक शब्द सार्थक भावपूर्ण है। ऐसे शक्ति संपन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया सारभूत पाठ है यह, इसे प्रणिपात सूत्र भी कहते हैं। तीन लोक में सर्वशक्ति संपन्न भी सिद्ध अरिहंत ही हैं और भौतिक ऐश्वर्य रिद्धि संपन्न भी अरिहंत होते हैं, जिनके साथ भामंडल स्फटिक सिंहासन अशोक वृक्ष आदि 8 महाप्रतिहार्य रहते हैं और नमोत्थुन के पाठ में उनके गुणों का स्मरण किया जाता है। अतः जिसके गुण गाएंगे उनके गुण अपने में आने शुरू हो जाते हैं। प्रणिपात का अर्थ है झुकना। नमे ते गमे, जो झुकता है वह पाता है। विनय तो सभी सद्गुणों का पात्र है। अरिहंत वीतरागी होते हैं, वे किसी का हित अहित नहीं करते। अरिहंतों के जन्म दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण के समय भी नारकी तक के जीवों को शांति का अनुभव होता है। वह शांति कोई देव या इंद्र नहीं पहुंचाते, बल्कि वह उन अरिहंतों के शरीर से निकलने वाली शुभ तरंगों से प्राप्त होती है। अभी भी पूरे वायुमंडल में अरिहंतों के शरीर निकलने वाली शुभ तरंगें फैली हुई हैं, जो हमारे द्वारा नमोत्थुन के पाठ से स्तुति करने पर हमारी आत्मा के साथ जुड़कर हमें भौतिक अभौतिक दोनों प्रकार का लाभ प्राप्त कराती है। अप्रमत्त मुनि मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते, फिर भी कामान शब्द का प्रयोग करके उन्हें मोक्ष का अभिलाषी कह दिया। इसका कारण यह है कि जिस कार्य से जो वस्तु प्राप्त होती है उसके कर्ता को उस चीज का अभिलाषी कह देते हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु के योग्य बनता है उसे भी उस वस्तु का अभिलाषी कह देते हैं, तथा जिस कार्य से जो परिणाम निकलने वाला हो उस कार्य के कर्ता को बिना अभिलाषा के भी उस परिणाम का अभिलाषी कह देते हैं। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्र के 7वें अध्ययन में कहा है, तो से पुट्ठे परिबुढ़े जाय मे महोरे पीनीय व्यूले देहे आयस परिक्के, अर्थात वह बकरा खा पी कर पुष्ट चर्बी युक्त बड़े पेट और स्थूल देह वाला हो जाता है, तब पालक पाहुने मेहमान की प्रतीक्षा करता है। जहाँ से खल्लू और रभ्भे आयसा समीहिये एवं बाले अहम मिठे इही नर्याओं में, अर्थात जिस प्रकार वह बकरा पाहुने के लिए ही निश्चित, उसी प्रकार अधर्मिष्ठ अज्ञानी की नरकायु निश्चित है। अय कक्कर भोई या तुंदले चियलोहिये आओ इन रेखे जहाँ एस वे, अर्थात मदिरा और मांस का उपभोग करने वाला, पुष्ट शरीर वाला, दूसरों का दमन करने वाला, बड़ी हुई तोंद और प्रचुर रक्त वाला व्यक्ति उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा करता है जिस प्रकार बकरे का स्वामी मेहमान की प्रतीक्षा करता है। इन उदाहरणों से यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस वस्तु के योग्य होता है उसको उस वस्तु का अभिलाषी कह देते हैं। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी मोक्ष मार्ग की उत्कृष्ट आराधना करने वाले होने से भगवान को मोक्ष का कामी कह देते हैं, किंतु मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय कर देने से उनमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। अगला मैटर भाग 7 में अवश्य पढ़ें।